ओम शांति। आज का विषय
भाई जी एक मिनट,
जितना सुंदर है बाद में दे। आज चलो
हमारे बीच में आदरणीय रेवादास भाई जी हैं, आप हिमाचल प्रदेश सुन्नी से पधारे हैं। पिछले 57 इयर्स से ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग में आप अडिग चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब 1970 में पहला सेवा केंद्र खुला, तब से ही आप सपरिवार ज्ञान में आए। 1995 में बड़े दादी जी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने आपको शांतिवन में बुलाया और सरकारी नौकरी छोड़कर आपने शांतिवन के निर्माण कार्य में सहयोगी बनने का आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। शांतिवन के आसपास 9 बीके कॉलोनीज बनी हैं, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया, जिसके 6 वर्षों तक आप चेयरमैन भी रहे और 2004 में नए भवन नव निर्माण हेतु आपका वापस बिलासपुर जाना हुआ। इसके बाद से ही आप सुन्नी में भी बाबा के भवन निर्माण के निमित्त बने और तब से वहीं पर सेंटर पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे बाबा के विशेष रतन से अभी हम सुनेंगे शांति की शक्ति। आदरणीय रेवादास भाई जी,
फिर से ओम शांति। आज का जो विषय है अति सुंदर भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये विषय हम सबसे संबंधित है। कल्पना करो, सारे विश्व की धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, सुख साधन या जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपको दे दिया जाए, लेकिन शांति ना दी जाए, ये सौदा मंजूर है? इसका ये मायने है कि शांति हमारे लिए कितना जरूरी है। असल में शांति हमारी अंदरूनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम इसके बिना जी नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन में सर्वाधिक बोलने वाला शब्द अगर कुछ है तो वो ओम शांति है। हम सुबह से शाम तक कितनी बार ओम शांति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लास शुरू होती है तो ओम शांति, खत्म होती है तो ओम शांति, मुरली शुरू हो तो ओम शांति, मुरली खत्म हो तो ओम शांति, कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो पहले ओम शांति, पूरा होता है तो ओम शांति, सारा दिन हम जिन किन को भी मिलते हैं तो ओम शांति, 10 बार भी अगर किसी को फोन करेंगे तो हर बार ओम शांति। तो सुबह से शाम तक कितनी बार ओम शांति होता है। और यहां मेरे कई भाई बहन शायद सोच रहे हैं भाई शांति का मतलब है शांति में सो जाना, तो सोना नहीं है, बात मेरी समझ लेना कि शांति का वास्तविक अर्थ है कि कितनी बड़ी विकराल समस्या हो, परिस्थिति हो, बात हो, पर मेरा मन अंदर स्थिर हो, शांत हो, स्टेबलाइज्ड हो, इसको मन की शांति कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बाबा भी गुलजार दादी के तन में आता है तो आते ही पहले 10 मिनट तो शांति में सबको दृष्टि देता है, मुझे याद आता है कि जब दादियां हमारे सेंटर पर आया करती थी, बड़ी बहनें जब सेंटर पर आती थी, तो ओम शांति शब्द का इतना प्रचलन नहीं था। हम लोग लाइनों में खड़े होकर के जब बड़ी दादी बड़ी बहन आती थी तो मौन में रह करके उनसे दृष्टि लेते थे। प्रैक्टिकल ओम शांति का सबूत था कि 15-20 मिनट कभी आधा घंटा भी लग जाता था नैन मुलाकात करते हुए, तब दादियां बड़ी बहनें सेंटर के अंदर प्रवेश करती। ये जो ओम शांति शब्द है, ये वास्तव में अब थोड़ा बाह्य मुखता में आ गया है। ये अंतर्मुखता का श्रृंगार है। शब्द का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तत्त्वम जिसको भी हम बोलते हैं वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम भूल गए, बाहर से इस शरीर को देखते रहे, इसी को खिलाते पिलाते रहे, इसी को कपड़े पहनाते रहे, श्रृंगार करते रहे, इसी के लिए सब कुछ किया और इसी में ही अपने आप को सुबह से शाम तक कोई अपने को स्त्री समझता, कोई पुरुष समझता, कोई बच्चा बूढ़ा जवान समझता, कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर समझता। ये कॉन्शियसनेस इतनी पक्की हो गई कि इसमें अगर जरा सी हलचल हो जाए तो वो अंदर जाकर के भी हिल जाता है। समस्या बाहर थी, परिस्थिति बाहर थी, घटना दुर्घटना बाहर घटी, लेकिन चोट हमें अंदर लगती है। ये जब चोट अंदर लगती है तो अंदर हलचल होती है, मन अशांत होता है और हम चाहते हैं कि मन शांति में स्थित रहे। कुछ भी हो जाए, हम इस समय तृतीय विश्व महायुद्ध के सामने खड़े ये सब देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अपने मन को स्टेबलाइज रखना है, स्थिर रखना है, शांत रखना है। क्या करें? बहुत हम ज्ञान सुनते हैं, क्लासें भी सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन जब तक ये स्वरूप में स्वमान में स्थिति में पर्सनल लाइफ में ये शांति का अभ्यास नहीं होगा, तब तक ये शब्द हवा में गूंजते रहेंगे। हमने आधा कल्प तक कितनी पूजा पाठ किए, प्रार्थनाएं की, ओम शांति शब्द दुनिया वाले भी बोलते हैं, लेकिन मुख से बोलते हैं, यहां मन का अंदर मुख है, हमें उससे इस बात को स्वीकार करना होगा। पहले तो हम ये समझने की प्रयत्न करेंगे कि ये शांति और अशांति ये रहती कहां है। आपसे मैं एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं, जरूर आपके जीवन में शांति भी आई होगी, अशांति भी आई होगी, कि जब वो आती है तो इस तन को लगती है कि मन को लगती है? क्या कहेंगे? मेरा गोड्डा अशांत है, मेरा पैर अशांत है, मेरी पीठ में अशांति है, ऐसा तो नहीं कहते ना। क्या शब्द बोलते हैं? मन अशांत है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी परिस्थिति अगर है, मन तो अंदर है, वो अंदर कहां से घुसा? समझो बाहर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, दिख रही है, खून निकल रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को कहूंगा डॉक्टर साहब मेरे यहां चोट लगी, वो उसको दवाई लगाएगा, स्टिच लगाएगा, पट्टी करेगा, भेज देगा, एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर अंदर चोट लग जाए, ठेस लग जाए, ब्रेकअप हो जाए, नुकसान हो जाए, आग लग जाए, शरीर में कोई बड़ी सीरियस कोई बीमारी हो जाए, क्या करोगे? किस डॉक्टर के पास जाओगे? इसका ही इलाज करने सुप्रीम सर्जन इस समय इस धरा पर आया है, और उसने हमको ये जो ओम शांति का महामंत्र दिया है, इसे कम नहीं समझना, पर पहले इसको समझना जरूरी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये पहले पहले जब मैं ज्ञान में आया था तो बहनें हमसे प्रैक्टिस कराती थी कि बोलो, मन से बोलो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा खुश स्वरूप हूं, तो हमारे अंदर से वोमिटिंग होती थी। नए नए आए थे ना, तो अंदर लगता था बहन जी शांति कहां, झमेले ही झमेले हैं, हम तो परिवार में रहने वाले हैं, आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा हूं, वे दुनिया भर के पाप करने वाले पवित्र कैसे बोले, मुख से निकलता नहीं था। ये अभ्यास से अंदर लाना है, ये पहले ये समझने की जरूरत है कि ये डायग्नोज किया किसने, किसी भाई ने किसी बहन को मालूम नहीं था, पूरी इस कायनात में किसी को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। आदिकाल से मानव मन की शांति के लिए प्रयास करता चला आया है, क्या कुछ नहीं किया, घर परिवार छोड़कर के जंगलों में कंदराओं में सन्यासी बनकर के लोग चले गए, लेकिन सच्ची मन की शांति उनको प्राप्त नहीं हुई। जो झमेला यहां था वो झमेला वहां, भले कोई उसका स्वरूप दूसरा है, लेकिन बाबा देखो कितना योग्य शिक्षक है, परम सतगुरु है, कितना मीठा है कि घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए, कल्पना करो अगर कहीं बाबा ने बोल दिया होता कि गेरुए वस्त्र पहनो, सिर मुंडवाओ और जंगल चले जाओ, तो हमारे घर परिवार का क्या होता, हमारे प्रॉपर्टी का क्या होता, हमारे रिश्तों का क्या होता, हम कहां होते? लेकिन बाबा की शिक्षाएं देखो कितने सुंदर हम रोज सुनते हैं कि घर में बैठ करके 24 घंटे में, आज तक हम 24 के 24 घंटे दुनिया को देते रहे, परिवार को देते रहे, बाल बच्चों को देते रहे, याद रखना अंत में कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका साथ सिर्फ और सिर्फ गीता में लिखा है, हे आत्मा तू अपना शत्रु भी खुद है और अपना दुश्मन भी खुद है। जब हम स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कल्याण का सोचते हैं, तब ये अंदर आत्मा शांत हो जाता, सुखी हो जाता, आनंदित हो जाता। लेकिन जब हम ही सोचते हैं, क्योंकि सोचते तो हम ही हैं, हमारे लिए दूसरा तो कोई सोचता नहीं है, मन आपका है, मन माना सोचना है, विचार करना, ख्याल करना, संकल्प करना, बात तो एक ही है। मेरे लिए आप नहीं सोच सकते, मैं क्या सोच रहा हूं आप मुझे देख नहीं सकते, मुझे रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। मेरी मर्जी है मैं राई को पहाड़ बना दूं, मेरी मर्जी है मैं पहाड़ को राई बना दूं, मेरी मर्जी है मैं किसी के लिए बुरा सोचूं, मेरी मर्जी है मैं किसी के लिए अच्छा सोचूं। लेकिन कर्मा फिलॉसफी क्या कहती है? अच्छा सोचोगे, अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे, अच्छा फल पाओगे। अच्छा फल पाना माना सुख, और बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, बुरा फल पाओगे माना दुख। तो सुख और दुख में इतना ही फर्क है कि हम खुद सुखी हो सकते हैं, हम खुद ही दुखी हो सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, फैसला आप हम सबको करना है कि हमें सुखी रहना है, शांत रहना है कि टेंशन में रहना है, अशांत होना है। ये फैसले आपको अपने आप से करने होंगे। इसके लिए बाबा ने हमें सोचना सिखाया है। छोटे बच्चे थे तो माँ बाप हमको उठना बैठना सिखाते, चलना फिरना सिखाते उंगली पकड़कर। स्कूल में टीचर हमको पढ़ाते, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवेश हमको बहुत सारी बातें सिखलाता है। हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सब सिखाते हैं, संसार के सारे काम धंधे सीख लिए। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं सिखाता, वो सिर्फ हमारा बाप सिखाता, हमारा टीचर सिखाता, हमारा सतगुरु सिखाता। वो शिव बाबा कहता है, बच्चे सोचना ठीक सीखो। ये बेस है, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन गलत हो जाता है तो आगे सारी बिल्डिंग हिल जाती है। आप सब ने मकान बनाए होंगे, कोशिश सबकी यही रहती है कि फाउंडेशन में डालने से पहले पंडितों को बुलाते, मंत्र पढ़ो, ईंट रखवाते, सेरेमनी करते, फिर मिस्त्री को कहते जरा प्लिंथ जरा पक्का रखना, मोटे मोटे पत्थर डालते, बहुत सारी कंक्रीट उसमें डालकर पक्का करने की कोशिश करते। अंदर भाव ये रहता कि कितना मंजिल ऊंचा भवन बने लेकिन हिले नहीं, तूफान आए, भूकंप आए, हिले नहीं। वो दुनियावी मकान था, वो गिरना ही गिरना है, और अगर नहीं भी गिरा तो आपके बाद आपके पेट से पैदा हुए बच्चे उसे गिराएंगे। वो कहेंगे क्या बुजुर्ग ने मकान बनाया, अकल ही नहीं थी। अभी देखो न्यू टेक्नोलॉजी, बढ़िया मकान आपको बना के देते हैं, वो गिर जाएगा। लेकिन जो फाउंडेशन शिव बाबा हमारे अंदर यहां रख रहा है, उस फाउंडेशन को जिसने भी पक्का किया, मेरा चुनौती है उसको दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई विकार, कोई बात, कोई घटना, कोई दुर्घटना, किसी प्रकार का रिंकल, किसी प्रकार का पिंपल उसको हिला नहीं सकता। उसके मुख में हमेशा चेहरे पर डिंपल रहेगा, वो मुस्कराता रहेगा, क्योंकि ये बात तब संभव है जब आप अपने आप को इस भावना से, इस वृत्ति से पक्का करेंगे कि मैं हूं ही आत्मा, शरीर नहीं हूं। इसमें समय लगेगा, अभ्यास करना होगा। कल्पना करो, बचपन से अब तक आपके मां बाप ने आपका जो भी नाम रखा, आपके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मित्र संबंधियों सब ने आपको उस नाम से पुकारा है, और लाखों ने करोड़ों बार पुकारा है, अब वो छाप अंदर से कैसे मिटेगी और इसके बदले में मैं एक आत्मा हूं ये वृत्ति की पक्की कैसे होगी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है और वो सलूशन आपके पास है। मैं तरीका बता सकता हूं, करना आपको है। कोई हमसे कभी कभी पूछता है कि भाई साहब फलानी जगह जाना है, यहां कभी अंदर ही हमसे पूछ बैठते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल जाना है भाई जी किधर से जाएं, तो हम खड़े खड़े उनको बताते हैं बहन जी इधर से जाओ, इधर से लेफ्ट हो जाना, राइट हो जाना, आगे पहुंच जाओगे। जाना किसको है? जो रास्ता पूछ रहा है, जो बता रहा है वो वहीं खड़ा है, वो आपके साथ नहीं चलेगा। बाबा ने हमको रास्ता बताया, बच्चे खुश रहना है, निश्चिंत रहना है, शांत रहना है, तो स्वयं को आत्मा निश्चित करो और मेरे को याद करो। कितना ज्ञान सुन लिया है हमने, पूरी लाइब्रेरी अंदर भर गई है। मैं स्वयं 57 साल से ज्ञान सुन रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन सार क्या है? आपके पास 57 वर्ष नहीं है, हमारी दादियां 90 वर्ष तक इस ज्ञान को सुनती रही, पेन डायरी लेकर के लिखती रही, हम आश्चर्यचकित होते थे। आज तो ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए रह गया, फॉर्मेलिटी रह गई, बाहर बाहर से आते, बाहर बाहर चले जाते, बहन जी को ओम शांति किया, ठीक है बहन जी कोई सेवा बताओ। असली सेवा अपनी स्वसेवा है। आप ठीक होंगे तो आप दूसरों को ठीक कर सकेंगे, नहीं तो खोखले रह जाएंगे। कई पोज करते हैं, दिखाते हैं, मैं भी ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, मैंने भी सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, बैज नहीं बहन जी दिखता आपको, बैज भी लगाया हुआ है, ये सब बाहर की, ये तो ड्रेस कोड है। लेकिन अंदर का ड्रेस कोड अगर हमने पक्का नहीं किया तो मैं आपको बताऊं, ऐसा समय आने वाला है कि आप खून के आंसू बहाएंगे। अगर आपको ये आत्मस्मृति का पाठ पक्का हो गया तो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात 1992 की है। एक भाई स्कूटर पर अपने किसी भाई को साथ लेकर कहीं जा रहा था। ये मैं हिमाचल की घटना बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। सुंदरनगर से वो दो भाई निकले, उन्ना से टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम आज वाला टेलीग्राम नहीं, जो मोबाइल पे आपका ऐप है, उस वक्त टेलीग्राम आता था तार घर से, तो उस पे बहन ने कहा कि आपको आज ही आना है। तो मैं सुबह जब क्लास में था तो हमारी बहन ने सुंदरनगर में क्लास में अनाउंसमेंट किया कि भाई जी आपको ऊना जाना होगा। और बाद में 3 मिनट का जब योग होता है तो एक भाई पीछे से उठ करके मेरे पास आ गया, कान में बोला, भाई जी क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? मैंने कहा हाँ बड़े शौक से, क्यों नहीं चल सकता। और हम वहां से नाश्ता करके निकले। जब हम थोड़ा दूर आगे गए 1 किलोमीटर तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो ट्रक वाला सरदार था, आपको याद होगा कि पीछे उग्रवाद फैला था पंजाब में, ये लोग बहुत कुछ अंदर खाते थे, नशा पंजाब में हिमाचल में बहुत चलता है, वो नशा पी करके सीधा ही आ गया और आगे कोई बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं खुद स्कूटर चला रहा था, वो भाई पीछे बैठा था। जब वो सीधा सामने आया तो मैं उस ट्रक के बीच में से उसके बीच में घुस गया। बड़े जोर की आवाज आई और वो ट्रक मेरे नाक पर से, पीछे का जो डिफरेंशियल होता है वो जब नाक पर से निकला तो मुझे लगा ये ट्रक अब निकल गया है। लेकिन जैसे ही वो आगे मुड़ा, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि आगे स्कूटर फंस गया है, तो उसने डाइवर्शन अपने साइड में लिया। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग साइड पे चल रहा था और उस बीच में ट्रक का पिछला टायर मेरी टांग के ऊपर से निकल गया, बूट पैर जराब सब कट के किनारे हो गया। ये 92 में मैं जनवरी में यहां आया था 18 जनवरी को, और उस वक्त दादी ने सबसे एक वायदा कराया था कि इस साल 31 दिसंबर तक सभी को आत्म अभिमानी बनना है और दिन रात ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और हम इसी अभ्यास में लगे हुए थे। मार्च दो महीने के बाद जब यह घटना घटी तो सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं भी उठ के बैठ गया। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरे से भिन्न है। मैं ऐसे ही बैठा रहा, लोग इकट्ठे हुए, बीच में से आवाज आई कि एक तो चला गया। मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ भी कोई बैठा था, क्योंकि मैं एकाग्र होकर के बैठा था, स्वरूप में स्थिति में बैठा था। मुझे लगा कहीं ये मेरे को तो नहीं कह रहे कहीं कि ये चला गया, तो मैं थोड़ा हिला तो उनका मेरी तरफ ध्यान गया। एक भाई आया, उसने मुझे उठाया, मैंने अपना बूट पैर जराब जो किनारे गिरा हुआ था मैंने वो एक हाथ से वो उठाया, मुझको गाड़ी में डाला गया। जो मेरे साथ भाई था वो वहीं ऑन स्पॉट उसने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसको हेड इंजरी हो गई थी। मेरे पास तो हेलमेट था पर उसके पास हेलमेट नहीं था। पर जो हुआ ड्रामानुसार, वहां से 1 किलोमीटर हॉस्पिटल था, मुझे उसी रीति उसी हालत में हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में सीधा लेके चले गए। जब थिएटर पर सुलाया गया तो मेरे हाथ में वो था, हमने सोचा ये जोड़ देगा, डॉक्टर है जोड़ेगा, तो उसने कहा इसको फेंक दो ये नहीं जुड़ेगा। और मुझे ऑपरेशन टेबल पर जब उन्होंने लिटाया तो नॉर्मली ऊपर वो चादर रखते हैं, सफेद चादर मेरे ऊपर उड़ा दी गई। बाकी वो फटाफट तैयारी करने लगे, आपस में बात करने लगे, जल्दी से एनेस्थीसिया की तैयारी करो, कोई नर्सेज अपनी तैयारी कर रही थी इंजेक्शन की, ये वो जो कुछ भी उनको तैयारी करनी है। मैंने धीरे से वो चादर अपने मुंह से हटाई ये देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे। तो वो सिस्टर जो वहां काम कर रही थी उसने देखा कि चादर नीचे है तो उसने फौरन फिर ऊपर की। मैंने फिर वो चादर नीचे की, फिर इस तरह से फिर एक बार और वो चादर ऊपर उड़ाई, मैंने फिर वो नीचे की। वो बहन कहने लगी आप इसको नीचे क्यों कर रहे हो, तो डॉक्टर आया मेरे पास कहने लगा कि आपको तकलीफ हो रही है हमें पता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको एनेस्थीसिया देने वाला हूं, इंजेक्शन लगाने वाला हूं, आपको फिर दर्द नहीं होगा। वर्चुअली वो डॉक्टर मेरे जानने वाले थे, डॉक्टर गुलेरिया थे बिलासपुर में, बहुत अच्छे सर्जन रहे हैं। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मेरी भी एक सुन लो, पहली बात मुझे किसी भी तरह का एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, लोकली भी नहीं। अगर आपको लगेगा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो मैं आपको कह दूंगा फिर कर लेना। वो डॉक्टर बड़ा अनुभवी, उसने पता नहीं कितने हजारों ऑपरेशन अब तक किए होंगे, वो कहने लगा भाई साहब अभी ये जो हो गया सो हो गया, मैंने इसको और ऊपर से काटना है। अच्छा ये टांग और ऊपर से काटोगे, ये जुड़ेगा नहीं क्या? कि ये नहीं जुड़ेगा, हम ऊपर से इसीलिए काटेंगे कि ताकि आर्टिफिशियल लिंब लग सके। ऑपरेशन थिएटर था, डिबेट करने का सवाल नहीं था। मैंने कहा भले करो, जो आपको करना है करो, लेकिन मुझे एनेस्थीसिया नहीं देना और मेरे ऊपर चादर भी नहीं उड़ानी, मुझे देखते देना। अब उसने सोचा मैं जब हिलाऊंगा इसको तो ये चीखेगा चिल्लाएगा, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट चीखता है क्योंकि दर्द होती है तो हाई तो बात तो मचती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं स्वरूप स्थिति में उसको साक्षी भाव से देखता रहा। उसने उठाया, घड़ी घड़ी पूछता रहा, फिर कहा मैं हम इसको काटने लगे हैं, और हेक्सा ब्लेड जिससे हम ये पाइप वाइप काटते हैं वो हेक्सा ब्लेड लेके आ गया। तो जब वो काटने लगा तो 5-7 मिनट हो गए उसे वो कट नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी कई चीजें जानता हूं, मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब नीचे से भी काटो और फिर इसको ऐसे तोड़ो। वो कहने लगा आपको दर्द नहीं हो रहा है? मैं कहने मुझे नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन मेरा नहीं शरीर का हो रहा है, मैं इसको साक्षी भाव से देख रहा हूं। और ये पहला अवसर था कि उस सर्जन ने वो सारा एम्पुटेट किया, पट्टी बांधी। वो कहने लगा कि मैंने आज तक हजारों ऑपरेशन किए हैं, आप सब लोग जो अनुभवी है जानते हैं कि डॉक्टर थिएटर से बाहर नहीं आता है, अटेंडेंट आते हैं, स्ट्रेचर पर पेशेंट को वार्ड में भेजते हैं, लेकिन वो खुद आया, मेरे साथ चला, बेड पर लटाया, कान में बोलता है अभी भी मैं आपको ये कहता हूं मैं आपको इंजेक्शन लगा दूं, आप रात भर सो नहीं सकेंगे। मैं मुस्कराया, भ्राता जी आपने इतना कर दिया, इसे आगे तो कुछ है भी नहीं, अब इसलिए अगर मुझे दर्द हुआ तो आप सिस्टर को बता के जाइएगा, आप निश्चिंत होकर के जाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और मैं तो पेन किलर भी नहीं लूंगा। और ये हादसा सुंदर नगर का था, मुझे दूसरे दिन वहां से शिफ्ट कर लिया गया, मैं बिलासपुर आया, वहां स्पेशल वार्ड एक मेरे लिए खाली कराया गया। वो सर्जन ने वहां उस सर्जन को बिलासपुर फोन किया, वो कहता हमारे मेडिकल इतिहास में मेरी लाइफ में एटलीस्ट ये पहला केस है कि किसी पेशेंट ने होश वाश में इनसेंसिस रह करके एम्पुटेट कराया और वो पेन किलर भी नहीं ले रहा है। और जब मुझे वहां लाया गया तो वहां पैरामेडिकल स्टाफ बहुत सारे डॉक्टर्स ये देखने के लिए खड़े थे, हमारे मुझे याद आ रहा है शीला बहन मंडी की, उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ वहां पीछे एग्जीबिशन बंद कराई, सारे भाई बहन हॉस्पिटल पहुंचे तो बीच में कई लोग कहा करते थे भाई ये ब्रह्मा कुमारियों का कोई गुरु आया है। तो मैंने कहा भाई मैं गुरु गुरु कुछ नहीं हूं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, एक नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूं। कहता आपको दर्द नहीं हो रही है? मैं कहा मुझे तो तब दर्द होगी कि अगर मुझे चोट पहुंचेगी। ये चोट किसको पहुंची है? ये तो शरीर को पहुंची है और शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये अभ्यास था लेकिन उतना पक्का नहीं था। इसको पक्का करने के लिए आज कितना वर्ष हो गया, 92 से अभी तक आप देखो कितना वर्ष हो गया है, हम लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें देख करके वहां का जो मेडिकल स्टाफ था, मेरा ख्याल है कि 62 लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स स्टाफ नर्सेस दूसरे सब लोग यहाँ आए और उन्होंने ये सारा करिश्मा देखा। हम इसको कहते ये बाबा का करिश्मा है, बाबा ने अगर हमको ये अकल ना दी होती तो हम तो जरा सा कहीं कांटा लगता था उसमें भी चीखते चिल्लाते थे, लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? ये था मेडिटेशन टेक्निक, ये थी आत्म स्वरूप का अभ्यास, ये था मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस बात का लगातार अभ्यास आज भी वैसे ही चल रहा है, हमने इसको खत्म नहीं किया। अभी समय हो रहा है, फिर आप लोगों जितने भी बैठे हैं मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, आप बड़े शांति से सुनते रहे। मेरे पास जीवन के ऐसे बहुत अनुभव है लेकिन समय सीमा है, आप बहुत समय से बैठे हुए हैं, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ओम शांति।
शक्ति स्वरूप।